नमस्कार भारत, 16 जून दिन शुक्रवार और मैं हूं प्रभात पांडे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अमेरिका को लगता है रूस से डर।
Пропаганда, постоянная подпитка НПО американской ориентированной.
झारखंड के झरिया में जमीन के नीचे धधक रही है आग, बंद हुई एक रेल लाइन। भारत बांग्लादेश सीमा पर धड़ल्ले से जारी है गायों की तस्करी।
पहले बोट के द्वारा नदी में हर दिन नावों के ऊपर में, बोट के ऊपर में गायों को ले जाकर के बांग्लादेश पार कराया जाता था धुली से।
और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होगा भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप के आरोप को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खारिज कर दिया है। एक सालाना टीवी कार्यक्रम में रूस के लोगों के सीधे सवालों के जवाब देते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अमरीका में रूस का डर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि रूस ने अमरीकी चुनाव में दखल नहीं दिया है। अमरीका में इन दिनों पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस के कथित हस्तक्षेप की जाँच चल रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शिया बहुल इलाके में स्थित एक मस्जिद परिसर में धमाका हुआ है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है, इनमें एक वरिष्ठ अधिकारी और यूनिट कमांडर भी शामिल है। धमाके में 10 लोगों के घायल होने की भी खबर है। ये धमाका मस्जिद में इफ्तार के समय हुआ है। उत्तरी कोरिया ने हाल ही में एक अमरीकी छात्र ऑटो बॉम्बियर को कोमा की स्थिति में रिहा कर दिया था। उत्तर कोरिया सरकार ने 22 वर्षीय छात्र की हालत के लिए बॉट्यूलिज्म और एक नींद की गोली को जिम्मेदार ठहराया था। बॉम्बियर के साथ ही अमरीकी प्रांत ओहायो के एक अस्पताल ने कहा है कि ऑटो को गंभीर दिमागी चोटें आईं और अब वो सामान्य स्थिति में हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी मेडिकल सेंटर के कर्मचारी अब ये साफ नहीं कर पा रहे हैं कि वो कब तक स्वस्थ हो पाएंगे या स्वस्थ हो भी पाएंगे या नहीं। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि वो करीब 1 साल पहले कोमा में किस स्थिति में चले गए थे। ऑटो के पिता फ्रेड वाम्बियर ने कहा है कि उन्हें उत्तरी कोरिया की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है।
Even if you believe their explanation of botulism and a sleeping pill,
अगर आप बॉट्यूलिज्म और नींद की दवा के कारण को कोमा में जाने के लिए उत्तर कोरिया के तर्क को मान लेते हैं तो भी मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं। किसी भी सभ्य देश के लिए स्थिति को छुपा के रखना या और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा नहीं देने का कोई भी बहाना नहीं हो सकता है। ये थे फ्रेड वाम्बियर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लंदन में 24 मंजिला ग्रेनफेल टावर की भीषण आग में ढह जाने से नाराज लोग लंदन के मेयर सादिक खान पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि इस अग्निकांड की जांच कर रहे जज को इन ही गर्मियों में अंतरिम रिपोर्ट देनी होगी। बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों की चिंताएं सुनने पहुंचे सादिक खान के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की। स्थानीय लोगों का सवाल था कि ग्रेनफेल टावर में लगी आग के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनके परिवार की संपत्ति की जांच कर रहे पैनल को अपने वित्तीय लेनदेन का विस्तृत ब्यौरा सौंप दिया है। पैनल के सामने 2 घंटे तक पेश हुए नवाज शरीफ ने कहा कि उनके विरोधी कभी उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास उनकी संपत्ति की पूरी जानकारी है।
मैं अभी अभी GIT के सामने अपना मौकफ पेश करके आया हूँ। मेरे तमाम असासों और वसाइल की सारी दस्तावेजात पहले ही मुतल्लिका इदारों बशमूल सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं।
ये थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के शब्द। नवाज शरीफ पर पनामा पेपर लीक्स मामले में भी कई आरोप लगे थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लीबिया के तट से राहत और बचाव कार्य में लगे जहाजों ने एक दिन के अंदर 1,000 से ज्यादा प्रवासियों को बचाया है। ये सभी लोग यूरोप पहुंचने की उम्मीद में छोटी छोटी नावों में सवार थे। रबर की एक छोटी सी नाव में 100 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर बांग्लादेशी थे। इटली में पिछले 6 महीनों के अंदर 65,000 प्रवासी पहुंचे हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। दिन है शुक्रवार, आप सबको प्रभात पांडे का नमस्कार।
I just don't think you understand. He's MS Dhoni's man. He smashes Pakistan. We've got miracle.
ये जश्न मना रहे थे भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस। कल एजबेस्टन में चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया और पहुंच गया फाइनल में, जहां उसका मुकाबला होगा अब पाकिस्तान से। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका और रूस के बीच चल रही तनातनी से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के मन में रूस का खौफ बढ़ता जा रहा है। पिछले साल अमेरिकी चुनाव में रूसी दखलंदाजी के आरोप लगे थे। कहा गया कि रूस ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए गैर जरूरी हस्तक्षेप किया। पुतिन ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि रूसी दखलंदाजी तो छोड़िए, दुनिया तो अमरीकी दखलंदाजी से परेशान है। रिपोर्ट सुनिए हरिता कांडपाल से।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका में रूस का खौफ इन दिनों बढ़ता जा रहा है। दरअसल अमेरिका में पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप पर घमासान मचा हुआ है और रूस इन आरोपों से इनकार करता रहा है। डायरेक्ट लाइन नाम के एक सालाना टीवी कार्यक्रम में राष्ट्रपति पुतिन ने अमरीकी चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि ये अमरीकी राजनीति की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है।
Америку своим врагом. Более того, дважды в истории, как мы хорошо знаем, когда нам было...
हम अमेरिका को अपना दुश्मन नहीं मानते। सभी जानते हैं कि दो ऐतिहासिक मौकों पर जब हम मुश्किल में थे, तब अमेरिका और रूस ने दोनों विश्व युद्धों में हाथ मिलाए थे। रूसी साम्राज्य ने अमेरिका को आज़ादी दिलाने में मदद की थी। अमेरिका में रूस का खौफ इन दिनों बढ़ गया है। ये उनकी आपसी राजनीतिक लड़ाई का नतीजा है। व्लादिमीर पुतिन के शब्द। इस कार्यक्रम में पूरे देश भर से लोग फोन कर राष्ट्रपति पुतिन से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। अमरीकी चुनाव में कथित रूसी दखल के सवाल पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है कि रूस अमरीकी लोगों के दिमाग और कामों पर प्रभाव डालना चाहता है, लेकिन चुनाव में रूस के हस्तक्षेप का आरोप गलत है। उन्होंने उल्टा दुनिया भर में अमरीकी दखल अंदाजी पर ही निशाना साधा।
Пропаганда, постоянная подпитка, подпитка НПО американско ориентированных.
अमरीका जो प्रोपेगेंडा लगातार चलाता रहता है, उसका क्या? खासतौर पर अमरीका आधारित एनजीओ को फंड देना, जिसमें वो हमारे चुनाव प्रचार के दौरान दिमाग और कामों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये हर साल होता है। आप ग्लोब को गोल गोल घुमा लीजिए और कहीं भी उंगली रख लीजिए, अमेरिका की इसमें दिलचस्पी जरूर होगी और वहां पर उसका दखल भी होगा। दुनिया के सभी बड़े नेताओं से बात कर मैं ये समझ सकता हूँ, कोई अमेरिका से बहस नहीं करना चाहता, इसलिए खुले तौर पर कोई ऐसा नहीं कहता है। इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि लोग उनके सामने सिर झुकाएं? हमारी अपनी राय है जिसे हम खुले तौर पर जाहिर कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के शब्द। अमरीकी चुनाव में राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के ईमेल के मामले में हैकिंग को लेकर रूस और ट्रंप का प्रचार अभियान सवालों के घेरे में आ गया था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन लगातार इन आरोपों से जूझते रहे हैं। रूस से कथित संबंध को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन अपना पद खो चुके हैं और कल ही अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस भी जांच कमेटी के सामने पेश हुए थे। ट्रंप प्रशासन पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा चुके एफबीआई प्रमुख जेम्स कोमी भी कुर्सी से हाथ धो चुके हैं। लेकिन अमरीकी चुनाव में रूस के दखल के मामले ने यूं तूल पकड़ा है कि अब उसे सजा देने की तैयारी हो रही है। अमरीकी सीनेट में रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पर वोटिंग भी हुई है। इस पर पुतिन ने कहा कि अगर क्राइमिया और अन्य समस्याएं नहीं होती तो भी अमरीका रूस को निशाना बनाने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ निकालता।
अमरीका और रूस के बीच बढ़ता तनाव। रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। झारखंड के झरिया में धरती के नीचे सालों से धधकती आग ने रेलवे की रफ्तार को भी लपेटे में ले लिया है। खतरे को देखते हुए 124 साल पुरानी धनबाद चंद्रपुरा रेलवे लाइन को गुरुवार से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही 1.5 दर्जन एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन फिलहाल रोक दिया गया है। इससे कोयलांचल के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। रांची से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
5 दिन पहले ही रेलवे बोर्ड ने 124 साल पुराने धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन को बंद करने का आदेश जारी किया था। इससे धनबाद से चंद्रपुरा के बीच 14 रेलवे स्टेशन और हाल्ट तो बंद हुए ही, फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों में आने जाने वाली 12 एक्सप्रेस और 6 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है, जबकि आधे दर्जन ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। मुकम्मल वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर रेलवे लाइन को बंद किए जाने से कोयलांचल के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। धरना प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच गुरुवार को कतरासगढ़ शहर बंद रहा और बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशनों तथा सड़कों पर निकले। एहतियातन पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया। इस बीच बंद हुए सभी स्टेशनों में धारा 144 लागू कर दी गई है और विधि व्यवस्था को लेकर जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया है,
हर स्टेशन पर जो पुराना बंद हुआ स्टेशन है और जो अल्टरनेट रूट है वो सारे स्टेशन पे फोर्स का तैनाती किया गया है। बाहर से भी फोर्स आया है, वो लोग सारे राइट गियर के साथ तैयारी हालत में वहाँ पे है कल रात से ही, और सीनियर पदाधिकारी कैंप कर रहे हैं, हमारे ग्रामीण SP वहाँ पे कैंप कर रहे हैं, हमारे SDPO बागमारा वहाँ कैंप कर रहे हैं। सुबह थोड़ा सा समस्या आया था एक ट्रेन को लेके, उसके बाद वो ट्रेन निकल गई है सेफली। अब बाकी उसके बाद 4-5 ट्रेनें और निकल गई है, कोई दिक्कत नहीं अभी।
इधर रांची हावड़ा, रांची जयनगर, गरीब रथ, रांची कामाख्या, भोपाल हावड़ा, रांची जलपाईगुड़ी, दरभंगा सिकंदराबाद, मालदा सूरत, कोलकाता हैदराबाद समेत अन्य एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के बंद होने से लोगों की नाराजगी भी साफ है।
पैसेंजर के इतना दिक्कत हो रहा है, किसके कारण दिक्कत हो रहा है, हमारे जब से मोदी सरकार आए हैं तब से जनता तबाह है। ये देखिए DC लाइन हटाने के कारण है, खास कि उनको कोयला चाहिए।
इन हालात पर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है।
मैं ये पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार राज्य सरकार से, अगर ये आग लगी है, कल परसों लगी है तो कोई बात नहीं, अगर ये आग बरसों बरस से लगी हुई है तो सरकार ने क्या इस विषय पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है।
जाहिर है झरिया की आग जिंदगी की दुश्वारियां बढ़ा रही है, जबकि इससे बचने के मुकम्मल रास्ते नहीं निकाले जा सके हैं। नीरज सिन्हा, BBC रांची।
कोयलांचल के लोगों में रेल लाइन बंद होने से बढ़ता गुस्सा, रिपोर्ट सुना रहे थे नीरज सिन्हा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरंग के निवास पर छापे के बाद दार्जिलिंग पहाड़ी इलाके में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। हमारे सहयोगी रवि प्रकाश इस वक्त दार्जिलिंग में हैं, उनसे बात करते हैं। रवि, इस वक्त ताजा हालात वहां पर कैसे हैं?
दार्जिलिंग में अजीब सी खामोशी है। कल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता रोशन गिरी ने कल देर रात राजनाथ सिंह जी से जयंती में मुलाकात की। उन्होंने गृह मंत्री को बताया कि गोरखा लैंड में क्या स्थितियां हैं और सरकार को किस तरीके से वहां हस्तक्षेप करना चाहिए। रोशन गिरी ने मुझे फोन पर बताया है कि गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस पर नजर रख रही है और समय रहते सरकार इस पर कोई ना कोई निर्णय लेगी। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल ही शाम कोलकाता में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सरकार की क्या कार्रवाइयां चल रही हैं। कल विमल गुरुंग के दफ्तर पर छापे के बाद हिंसा की वारदातें हुई थी और इसके बाद उपद्रवियों ने एक मीडिया की गाड़ी में भी आग लगा दी थी। इसके अलावा दो और कार्यालयों में भी आग लगाने की सूचनाएं मिली। कुल मिलाकर दार्जिलिंग में के लोग काफी डरे सहमे हैं और सड़कों पर सन्नाटा है। आमतौर पर इस मौसम में लोगों की भीड़ रहती है और पर्यटन उद्योग यहाँ पर काफी ऊपर रहता है, लेकिन इस मौसम में पर्यटन उद्योग को भी बड़ा झटका लगा है। जी
रवि, लेकिन वहाँ पर जो टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं और इस समय जो वहाँ पर आए हुए हैं, उनके बीच किस तरह का माहौल है? क्या वो डरे हुए हैं या किस तरह की स्थिति है वहाँ पर?
सर, जैसे ही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और दूसरे संगठनों ने घाटी में अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया, जो भी पर्यटक दार्जिलिंग में थे वो तत्काल लौट गए। पूरे दिन पर्यटकों की गाड़ियां वापस सिलीगुड़ी जाती हैं ताकि वो अपने घरों को लौट सकें, और दार्जिलिंग के तमाम होटलों में ताले लटके हुए हैं। इक्का दुक्का लोग जमा है जो सड़कों पर डर के मारे नहीं निकल रहे हैं। एक और इस बीच में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विमल गुरुंग का एक वीडियो सार्वजनिक हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि गोरखा लैंड राज्य की बात सरकार मान न ले। विमल गुरुंग पर क्योंकि पुलिस ने मुकदमा किया हुआ है इसलिए वो छिपे हुए हैं और कल शाम उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को इन्वाइट किया था, बाद में अचानक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई और वो छिपे ही हुए हैं। ये दार्जिलिंग की ताजा स्थिति है। पुलिस ने पुलिस आर्मी और जो सीआरपीएफ के जवान है उनके साथ काम कर रही है और लोगों और लोगों अफसरों ने बताया है कि 1400 केंद्रीय बल की प्रतिनियुक्ति दार्जिलिंग में की गई है ताकि स्थिति पे काबू किया जा सके।
जी जी रवि, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दार्जिलिंग के ताजा हालात बता रहे थे रवि प्रकाश।
बीबीसी इंडिया बोल। खेती किसानी में लगातार घाटा, कर्ज का बढ़ता बोझ और आत्महत्या करते किसान, क्या आधुनिक भारत में खेतीहर की किसी को चिंता नहीं? मध्य प्रदेश में पुलिस गोलीबारी में किसानों की मौत के बाद क्या नरेंद्र मोदी सरकार जागेगी? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 17 जून को मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारत में बीते कुछ महीनों से गोरक्षा, गोहत्या और बीफ बैन जैसे मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है। इस सब के बीच इस बात पर बहस थोड़ी धीमी पड़ गई है कि भारत से मवेशियों की तस्करी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, खास तौर से भारत बांग्लादेश सीमा पर। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव इसी बात की पड़ताल करने असम में बांग्लादेश बॉर्डर पहुंचे। सुनिए ये खास रिपोर्ट।
अपने आप चढ़ेगा ये?
सुबह के 8 बजे हैं। बीएसएफ के एक दर्जन थके से जवान रात के शिकार के बाद अब थोड़ी राहत में हैं। पिछली रात बीएसएफ दस्ते ने विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी से तस्करी किए जा रहे 140 मवेशी पकड़े हैं।
ये गाय किसका है? तुम्हारा है? इसको वहां से
असम राज्य के धुबरी जिले की ये आखिरी भारत बांग्लादेश बॉर्डर आउटपोस्ट है जो मीलों तक नदी से घिरी हुई है। इन दिनों तस्करों ने नदी में तैरा कर तस्करी करने पर ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। इन मवेशियों को अब तब छोड़ा जाएगा जब धुबरी में कस्टम विभाग इन्हें नीलाम कर इनकी खरीद की पर्ची बांटेगा। लेकिन यहाँ पहुँचने के पहले असम के वरिष्ठ भाजपा नेता और फाइनेंशियल कॉरपोरेशन प्रमुख विजय कुमार गुप्ता ने जो बात हमें बताई थी वो एकदम विपरीत थी। विजय कुमार गुप्ता,
वहाँ पे जिस तरीके से एक एक साल के अंदर में 40,000 गायों की जो है स्मगलिंग होती थी, अगर आज आप जाकर के देखेंगे तो आपको आप पाएंगे या उन लोगों से पूछेंगे, पहले बोट के द्वारा नदी में हर दिन नावों के ऊपर में, बोट के ऊपर में गायों को ले जाकर के बांग्लादेश पार कराया जाता था धुबरी से। आज के डेट में आपको पूरे दिन आप बैठे रहेंगे तो शायद आपको 4-5 मतलब एक भी गाय आपको जाती हुई बांग्लादेश नहीं दिखेगी। तो यह हम कह सकते हैं बड़े दावे के साथ और विश्वास के साथ हम कह सकते हैं और बड़ी प्रामाणिकता के साथ हम कह सकते हैं कि आज के दिन में बांग्लादेश धुबरी बॉर्डर से गायों का स्मगलिंग नहीं।
भारत और बांग्लादेश बॉर्डर 4000 किलोमीटर से भी लंबा है। अकेले असम में ये सीमा 250 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और जटिल भी, क्योंकि अधिकांश ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से बटी हुई है। अनुमान है कि सीमा से हर साल करीब 10 लाख मवेशियों की तस्करी होती है। 2014 में केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जब सत्ता में आई थी उसने इस तस्करी को बंद करने का वादा किया था। 2015 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां के दौरे के दौरान कहा था कि इन मवेशियों को वे बांग्लादेश तस्करी के जरिए नहीं जाने देंगे। अब केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और प्रदेश में भी, लेकिन तस्करी जारी है। राजधानी गुवाहाटी से धुबरी पहुंचने में हमें 7 घंटे लगे। जैसे जैसे कस्बे पार होते गए खेत खलिहानों में चरने वाले मवेशियों की तादाद बढ़ती गई। अक्सर ऐसे लोग दिखे जो 4-5-6 मवेशियों को लेकर बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। एक से पूछा, ये गाय कितने की खरीदी? बताया उसने 15,000 रुपए में। मैंने पूछा आपकी है? तो उनके पास जवाब नहीं था। स्थानीय लोगों के मुताबिक असम के पशु मेलों में बिकने वाली इस तरह की गाय बांग्लादेश पहुंचकर 3 गुना यानी 45,000 रुपए तक में बिकती हैं। धुबरी जिले में सीमा से सटे गांव में हमारी मुलाकात 32 वर्षीय अयूब अली से हुई।
आज से 10-15 साल से रोज 10-15 हजार 5 हजार रोज गोरु जाता है यहाँ से, ओपन जाता है।
हम ये कहता है कि ये हमारा यहाँ जो आदमी है, हम ये परेशान होता है कि ये जो आदमी आता है बॉर्डर से आता है, चौर से आता है, लेकिन ये गोरू जो आता है ये यूपी बिहार से आता है, लेकिन ये गोरू से मेन रोड से आता है, नेशनल हाईवे रोड से आता है। गोरीब बस्ती के इतना नौजवान है, हमको बहुत दिक्कत लगता है कि हमारे यहाँ से जो स्मगलिंग होता है गोरू, हम देखते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं करते, लेकिन सरकार, हम तो कुछ नहीं करते, सरकार कुछ नहीं क्यों करता है।
सीमा के गांवों में कुछ दिन बिताने पर हमें दर्जनों ऐसे लोग मिले जिनका दावा है कि तस्करी जारी है। नाम न लिए जाने की शर्त पर बॉर्डर पर निगरानी करने वाले बीएसएफ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की, हालांकि ये कहा कि इसमें कमी आई है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह बंद हो गई है। मैंने एक अफसर से पूछा कि बीएसएफ पर भी तो आरोप लगते रहे हैं कि तस्करी को अनदेखा करते हैं। जवाब मिला कि एक आधा मामले हो जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे जवान बेचारे विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। दरअसल सीमा सुरक्षा बलों का दावा रहा है कि बॉर्डर पर तस्करी करते हुए पकड़े गए मवेशी दोबारा तस्करी का सामान बन जाते हैं और इसमें स्थानीय प्रशासन को ज्यादा कार्रवाई करने की जरूरत है। हालांकि असम पुलिस के डीजीपी मुकेश सहाय ने इन दावों को खारिज किया, लेकिन साथ में तस्करी की बात भी स्वीकार की। मुकेश सहाय,
कैटल स्मगलिंग और दूसरों चीज़ों की भी स्मगलिंग पर भी हमने एक टास्क फोर्स बनाई और आपने देखा होगा कि असम में कैटल स्मगलिंग पर बहुत बहुत ही ज़ोरदार कार्रवाई की गई और काफ़ी सक्सेस मिली उसमें। जो स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, काफ़ी स्मगलर न्यूट्रलाइज़ किए गए, काफ़ी स्मगलर पकड़े गए और इसमें काफ़ी कमी आई है। लेकिन इसमें भी जैसे ये बिल्कुल ख़त्म हो नहीं पाई, इसलिए कि अभी भी कई जो बॉर्डर का इलाका है वो खुला इलाका है, तो ये समस्या ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन हमने पिछले एक साल में इसमें काफ़ी प्रयास किए हैं।
धुबरी बॉर्डर जाने पर और पड़ताल करने पर असम के वरिष्ठम पुलिस अधिकारी की बात ज्यादा समझ में आती है। मोहम्मद अशरफुल हक पेशे से किसान हैं और ब्रह्मपुत्र किनारे खेती करके परिवार का गुजारा करते हैं। अशरफुल ने बताया,
ये जो गोरू का स्मगलिंग होता है यहाँ, ये बात सही है। अगर छोड़ता नहीं, पूरा पूरी रोक देता तो इतना बढ़ता नहीं ये सिस्टम। पहले शुरू से अगर उसको रोकने के लिए कोशिश करता सरकार तो ये इतना बढ़ता नहीं। लेकिन गोरू जो आ रहा है उधर, आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, आपका पंजाब, ये सब से जो लोड़ी भर भर के आ रहा है, देखिए यहाँ पार होने में सिर्फ दो दिन लगता है या एक दिन लगता है, उधर से हफ्ता हफ्ता भर गाड़ी में रहता है। सरकार उधर अगर थोड़ा मेजर ये देता, उधर प्रशासन देता, तो गोरू यहाँ तक पहुँचने नहीं सकता।
हाल ही में संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें तमाम सांसदों की एक समिति ने सरकार से इस बात पर जवाब मांगा है कि सीमा पर मवेशियों की स्मगलिंग कम क्यों नहीं हो रही है, तादाद बढ़ती क्यों जा रही है। संसद में उठे सवालों पर और खुद बॉर्डर जाकर पड़ताल करने पर ये कहने में कोई हिचक नहीं कि तस्करी धड़ल्ले से जारी है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी असम।
भारत बांग्लादेश सीमा पर खुलेआम चल रही है मवेशियों की तस्करी, रिपोर्ट सुना रहे थे नितिन श्रीवास्तव। और अब वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का। हिंदी अंग्रेजी के तमाम अखबार लेकर स्टूडियो आ चुकी हैं हरिता। तो हरिता बताइए, क्या है अखबारों की सुर्खियां आज?
जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पशुओं की, अब आजकल पशु और गोवध जो है भारत में चर्चा का विषय है। द हिंदू अखबार और इसके अलावा सभी अखबारों में ये खबर है कि पशुवध बैन पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, 2 हफ्तों में जवाब देना है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो दलील दी है उसमें कहा है कि देश भर में वध के लिए गोवंश और अन्य पशुओं की खरीद फरोख्त पर जो बैन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि उसे देश भर में एक रेगुलेशन सिस्टम बन सके पशुओं का जो व्यापार होता था उसे लेकर। एक और खबर सारे ही अखबारों की सुर्खियाँ बनी है, वो है हिंदुस्तान टाइम्स में, उस पर लिखा गया है कि केंद्र सरकार ने पशुओं को लेकर नए नियम को थोड़ा नर्म करने के संकेत दिए हैं। राज्यों के लिए अब ये हो सकता है कि बाध्य ना रहे ये सारे नियम। और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सुनिश्चित करेगा कि किसी का भी दिल जो है इसे लेकर तकलीफ में ना हो। देश भर में किसान जो है आज हाईवे जाम करेंगे। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने ऐलान किया कि आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच पूरे देश में हाईवे जाम होगा। संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने कहा है कि किसान मजदूर संघ मंदसौर में जो पुलिस की गोलियों से 6 किसानों की मौत हुई थी उसका सच पूरे देश के सामने लाना चाहता है। इसके अलावा एक और खबर है, आज से रोज़ बदलेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। हिंदुस्तान अखबार ने इसकी हेडलाइन ली है और उसमें ये बताया गया है कि नए दाम जो है रोज़ सुबह 6 बजे बदल जाएंगे और नए दाम जो है सुबह सुबह लागू होंगे। गोरखा लैंड की मांग आजकल जो है चर्चा में है। द हिंदू अखबार ने लिखा है कि दार्जिलिंग सुलग रहा है और इस बीच केंद्र सरकार गोरखा लैंड की मांग पर बातचीत करने के लिए 3 पक्षीय बातचीत करना चाहती है। इसमें गोरखा जो GJM है और पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार शामिल होंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया हरिता आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब बात चैंपियंस ट्रॉफी की। कल एजबिस्टन में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को बड़ी आसानी से 9 विकेट से हरा दिया और फाइनल में पहुँच गया, जहाँ रविवार को भारत का फाइनल में मुकाबला होगा पाकिस्तान से। और इस मुकाबले को लेकर सभी क्रिकेट प्रशंसकों में है ज़बरदस्त उत्साह। कल के मैच के पूरे ब्यौरे के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोग अपूर्व कृष्ण। अपूर्व, बताइए कल के मैच की क्या हाइलाइट्स रहीं?
प्रभात, इस बार बांग्लादेश जिस तरह से खेल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, जिस तरह से उसने सेमीफाइनल तक का रास्ता तय किया, तो उम्मीद की जा रही थी कि काफ़ी कड़ा मुकाबला होगा। और वैसा लग रहा था कि कुछ उस तरफ जा भी रहा है मैच। भारत ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग पहले थमाई थी और बांग्लादेश की ओर से तमीम इकबाल और मुशफिकर रहमान, ये जब दोनों खेलने आए तो एक समय लग रहा था कि बांग्लादेश बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करेगा। तमीम इकबाल ने 70 और मुशफिकर रहमान ने 61 रन बनाए, लेकिन जब लग रहा था कि बहुत कोई गेंदबाज नहीं चल रहा है भारत का, तब कप्तान कोहली ने केदार जाधव को बॉल थमाई और उन्होंने दोनों को आउट किया, रहमान को और तमीम इकबाल को। और इस तरह से आखिर में जो बड़ा स्कोर जाता हुआ दिख रहा था वो बांग्लादेश का स्कोर 7 विकेट पर 264 रन पर जाकर टिक गया और भारत को जो लक्ष्य था वो 265 रन का था। और इसके बाद जब भारत की टीम के बल्लेबाज बैटिंग के लिए उतरे तो उसके बाद मामला पूरा एक तरफा होता हुआ दिखाई दिया। रोहित शर्मा, शिखर धवन ने ज़बरदस्त ओपनिंग की, धवन ने 46 रन बनाए और दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 87 रन की ओपनिंग साझेदारी की और उसके बाद काम काफ़ी आसान हो गया। धवन के बाद कैप्टन कोहली आए, रोहित शर्मा के साथ ज़बरदस्त बैटिंग की और भारत ने सिर्फ 1 विकेट खोकर लक्ष्य पूरा कर लिया। रोहित शर्मा के 123 रन, कोहली के 96 रन नॉट आउट।
बहुत बहुत शुक्रिया पूर्व मैच की हाइलाइट्स बताने के लिए। और भारतीय जीत के बाद बर्मिंघम में मौजूद BBC संवाददाता पवन सिंह अतुल ने वहां जश्न मना रहे भारतीय फैन से बात की और उनसे जानना चाहा कि पाकिस्तान के खिलाफ 18 जून को होने वाले फाइनल को लेकर वो क्या सोचते हैं।
भारत आज जैसे जीती है, जैसे जीतती आ रही है, मुझे तो यही लगेगा कि भारत ही जीतेगी। लेकिन जैसे पाकिस्तान अभी अपने पिछले 2 मैच इतनी जबरदस्त अपने अपोनेंट को हराया ना, तो मुझे लगता है कि अब भारत और पाकिस्तान का बड़ा टफ मैच होगा। लेकिन मुझे लगेगा कि भारत आएगी,
बहुत जबरदस्त मैच होगा। इंडिया और पाकिस्तान दूसरी बारी मिलेंगी इस कॉम्पिटिशन में, मुझे लगता है इंडिया जीतेगी।
वो इंडिया जीतेगा, वो सब लोग के लिए या मुल्क के लिए भी, हमेशा के लिए हम जीतेंगे उसके साथ। इंडिया बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन हुए।
संडे के मैच के बारे में आपको कैसा लगता है, मुकाबला है?
भाई साहब, मुकाबला तो जरूर है, लेकिन इंडिया से पाकिस्तान ने ना आज तक कोई मैच जीता है ना कभी जीतेगा, हम ही जीतेंगे। वी आर स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ अस, वी गोना विन डेफिनेटली।
और भारत बांग्लादेश के बीच हुए इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इस मैच के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच जो फाइनल होने वाला है उसकी भी तमाम बातें होने लगी। सोशल मीडिया पर क्या कुछ हलचल हो रही है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। पाशा जी, बताइए ट्विटर पर क्या चल रहा है?
जी प्रभात, ऐसा लग रहा है कि भारत बांग्लादेश का मैच खत्म होने के बाद एक और मैच शुरू हो गया है भारत और पाकिस्तान के प्रशंसकों के बीच ट्विटर पर। और अभी मैं आंकड़े देख रहा था, 30,000 से ज़्यादा ट्वीट इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच के उससे किए जा चुके हैं और 17,000 से ज़्यादा ट्वीट इंडिया बनाम पाकिस्तान, ये 2 अलग-अलग ट्रेंड हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने लिखा है, वेल प्लेड इंडिया, अब जो है बड़ा मैच होगा और पाकिस्तान की टीम से उन्होंने फोकस रहने के लिए कहा है। लेकिन जो सबसे मजेदार ट्वीट किया है वो किया है भारत के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने। उन्होंने लिखा है, वेल ट्राइड पोते, ग्रेट एफर्ट टू रीच सेमीज, घर की ही बात है, फादर्स डे पर बेटे के साथ फाइनल है, मजाक को सीरियसली मत लेना। लेकिन ये मजाक जो है सहवाग वाला, ये वाकई में लोग सीरियसली ले रहे हैं। संदीप नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, पाकिस्तान में अचानक से पुरानी टीवी सेट्स की बिक्री बढ़ गई है ताकि वो भारत से हार के बाद तोड़ने में काम आए। दोनों देशों के प्रशंसक एक दूसरे पे निशाना साध रहे हैं और अगर मजा लेना है तो ट्विटर पर लिया जा सकता है।
दिलनवाज, सोशल मीडिया की तमाम हलचल बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज का आपका। नमस्कार भारत में आज बस इतना ही। तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। मुझे दीजिए तमाम साथियों के साथ इजाज़त। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे दिन भर में। धन्यवाद।